मूर्तिमती माया है स्त्री, तो ऐसी स्त्रियां स्त्री के द्वारा कुछ लतों को ढूंढा, जब उसके भुजा रूपी लता से शाखा से उपगुह आलिंगित होता है तो प्रस्कन्न विवेक, इसका विवेक शब्द हवा हो जाता है, खत्म, प्रस्कन्न में चिर जाना, विवेक शब्द समाप्त हो जाता है। स्त्री की भुज लता में आया तो बस विवेक खत्म हुआ, और विवेक जब समाप्त हो जाता है तब मनुष्य क्या सोचता है, उसी के लिए बिहार गृह मातृ हृदय, अब अपने वाइफ के लिए घर बनाना है, ऐसा बाथरूम बनाना है, एक कार लेना है, ये करना है, इधर घुमाना है, उधर घुमाना है, पूरा दुनिया का टूर कराना है उसको, अब केवल यही सोचता रहता है, वो कृष्ण को प्लीज करना नहीं चाहता, स्त्री को प्लीज करना चाहता, इसको घुमा दूं, उसके लिए ये ला दूं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो स्त्री के लिए अलग कार रखते हैं, तो वही चढ़े या उस लता पर जो पक्षी जन्म है उनके लिए भी अलग अलग कार, बच्चा स्कूल जाता है तो अलग कार से जाएगा, हमारे लिए अलग कार है, दो दो चार चार पांच पांच जो प्रवासी भारतीय विदेशों में रह रहे हैं प्राय हमें ऐसे रखे, सब लोग ऐसे रखे, और दिमाग लगा हुआ है पत्नी के लिए ये किया वो किया वो किया ये किया वो किया, ये करना है ये करना है वो करना है, और स्त्री की जो मांग है वो बहुत ज्यादा होती है, बहुत जी उसे हाथी कहते हैं, हाथी रखना आसान है लेकिन हाथी को खिलाना पिलाना पोसना बड़ा कठिन है, इसलिए आजकल के स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के हाथी रखने से पहले सोचते हैं कि उसके भोजन की व्यवस्था, हाथी साला घर आदि भी चाहिए, बढ़िया से फ्लैट चाहिए, है कि नहीं, पुरुष तो रोड पर भी रह लेगा, वृक्ष के नीचे भी रह लेगा, लेकिन वो आएंगे तो कहां रहे, गांवों में प्राय मैं देखा हूं लोग जब अपने बच्चे का गौना करते हैं तो गौना करने से पहले कहा तो वो आएंगे तो कहां रहे, कोई घर बना लो, नया घर बना लो, ये कर लो, तुम जिसमें कहा रहे तो नहीं रह सकते हैं, नहीं, इसके लिए दूसरा घर चाहिए, दूसरा गृहारंभ, गृहारंभ, अपनी पत्नी के लिए ही वो सब कुछ सोचता रहता है, इसको इतने रुपये का गहना बनाना है, बिहार का है कार घूमने के लिए, पहले के बिहार हाथी घोड़ा होते थे बाल की नौ पर चक्कर, लेकिन अब तो कार मोटरसाइकिल ये सब बिहार, और घर द्वार फर्नीचर मूल हो सब कपड़ा गहना आकुल हृदय हमेशा इसी में व्याकुल रहता, सोचने में करने में, और तदाश्रय आवश्यक और उस स्त्री के संग से आश्रय से जो चिपके हुए लगे हुए, मतलब जब वो स्त्री संग करता है तो कुछ पक्षी जन्म लेंगे ही, है कि नहीं, जो कलरव करेंगे शुरू शुरू में माना नहीं पापा पापा पम्मी अब तुम बोलने लगे, और सब पक्षी अंग्रेजी बोलने लगे, छोटे छोटे पक्षी जन्मे हैं भारतवर्ष की लता से और भारतवर्ष के पुरुष से, और बोलते हैं डॉगी, क्या जमाना आ गया, देखिए क्या समय आ गया, वो पिताश्री नहीं कह सकते, माताश्री नहीं कह सकते, अम्बा नहीं कह सकते, सब बदलता जा रहा है, जो भी हो मतलब उस स्त्री के संग से उत्पन्न सूत दुहित्र कलत्र भाषिता व लोक पुत्र और पुत्री तथा कलत्र मतलब पुत्र पद्र इनके ही भाषण और अवलोक को सुनता देखता रहता है, अगर अपनी पत्नी से बच्चा हो गया तो उसी को देखता रहेगा, गोद में खिलाता रहेगा 24 घंटा, और पुत्र वधु आ गए तो उसकी बात सुनने में इसको आनंद आता है, वो भी पापा जी कहती है ना ससुर को, वो फादर इन ला हो गए, कानूनी फादर हो गए, वास्तव में फादर है ही फादर इन ला, अंग्रेजों का दिया हुआ सब,
संविधान के अनुसार पिता, और नेचुरल पिता तो अपने पिता है, जो भी हो अपनी पत्नी का जो पिता होता है वो भी पिता होता है, और अपने पति का जो पिता होता है वह भी पिता होता है उस स्त्री के लिए। तो पुत्र प्रभु की बात को ससुर जी बहुत सुनना चाहते हैं, जबकि यह नियम है कि उन्हें बिल्कुल अलग रहना चाहिए पुत्र वधु से। कोई बहुत आवश्यक अवसर आ जाए तब उससे बात करें। ये आजकल के तो ऐसे भी ससुर हैं वो पुत्र वधु को ही लेकर घूम रहे हैं। इतना पापी युग आ गया, क्या कहा गया, अपनी बेटी है लेकिन उसको लेकर घूमते हैं। बहुत तो पाप हो रहा है, भागवत सारा दिग्दर्शन करा रहा है, समझ जाओ कौन किस पाप को कर रहा है, और आज से ही कान पकड़ लो कि ऐसा आप नहीं करेंगे। ये सीखना चाहिए रेली भागवत से, नहीं सीखेंगे तो भागवत तो ऐसे ही रह जाएगा, कमी तो आपकी रह जाएगी। जान में अनजान में और ज्ञान में जो पाप हो रहा था उसको भगवान माफ कर देंगे, लेकिन अब ये सब बात सुनने के बाद भी करेंगे तब तो अब वज्रलोक होगा, तब तो अपराध के साथ जुड़ेगा पाप। तो इसमें देखिए लिखा गया सोत दुहित्र कलत्र, यहाँ कलत्र का अर्थ है स्त्री, तो अपनी स्त्री अथवा अपने पुत्र वधु, इन्हीं के भाषित और अवलोक, भाषित मतलब उनके वचन को, बोली को, अवलोक दृष्टि को और विचेष्टि को, उनकी लीलाओं कार्यों को अपहृत हृदय हमेशा सोचता रहता है, उनको देखता रहता है, उनकी बात सुनता रहता है और उनके बारे में सोचता रहता है। आत्मान अजितात्मा अपारे अंधे तमसी पहले, तो इस तरह से अजितात्मा इंद्रियों के बस में रहने वाला यह गणित अपने को घोर अंधकार में अज्ञान में डाल, ये दशा है वास्तविक संसार में सभी इसी अंधकार में डूबे हुए, केवल स्त्री की भोजलता में कभी उलझ गए और बेटा बेटी की बात सुन रहे हैं, और बेटा बेटी के लिए, पुत्र वधु के लिए, स्त्री के लिए घर बनाओ, ये करो ये करो ये करो, इसी में जीवन जा अज्ञान में डूबा। मैं 11 बजा दिया, अब मैं यहां बंद करता हूं। फिर अब दूसरे सूत्र में इस अध्याय को पूरा किया जाएगा, तब तक अभी बैठ, अब आगे अनुमोदन चलेगा। हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रीद्वैत गदाधर सुवासादि गौर भक्तवृंद, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, हरि बोल। नैमिषारण्य का यज्ञ बंद कीजिए, कुछ ही उधर कुंड की तरफ देखिए मत, सुनिए, कोई भी उधर टेंशन ना करे, कथा की तरफ रहना चाहिए। कदाचित् ईश्वरस्य भगवतः विष्णुः चक्रात् परमाणु आदि द्विपरार्धा अपवर्गा काला उपलक्षणात् परिवर्तितेन वयसा रंगसा अरसः आग्रह तिरस्तंभ आदिना भूताना अनिमिषतः निषता वित्रस्त हृदय ईश्वर कालचक्र निजायुध साक्षात् भगवन्ता यज्ञ पुरुषां अनादृत्य पाखंड देवतः कंक गृध पट प्राय आर्च समय परिहृतः शांतित्येन अभिधत्ते तो उसे प्राकृत जगत का वर्णन किया जा रहा है। इस माया जगत में विशेषकर मनुष्यों की कैसे चेतना हो जाती है, किस तरह वे भोगों में पड़ जाते हैं या पाखंड में पड़ जाते हैं, इसका वर्णन किया गया है। इस श्लोक में पाखंड का वर्णन किया गया। हरि बोल, क्यों नहीं मानते? कोई दूसरा कार्य नहीं होना चाहिए। इस जगत में ईश्वर का ज्ञान है नहीं। भगवान के बारे में बहुत कम लोगों को ज्ञान है, परंतु भगवान के विषय में श्रद्धा बहुत लोगों को है कि भगवान है, जगत के ईश्वर है, चाहे निराकार है चाहे जैसे हैं, भगवान है। इस विषय में बहुत लोगों की धारणा है, लेकिन भगवान वास्तव में क्या है और उनके साथ हमारा क्या संबंध है और उस संबंध के अनुसार हमारा क्या कर्तव्य है, इस विषय को बहुत कम लोग जानते हैं। तो यहां बताया जा रहा है कि यहां वणिक समुदाय इस भावातरों में, इस संसार रूप वन में चलता रहता है और कभी कभी यह सिंहों के समुदाय को देखकर भयभीत हो जाता है। तो पहले इसकी थोड़ी सी व्याख्या हुई थी। यहां पर सिंह समुदाय का अर्थ है काल के विविध अंग, उसमें सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि परमाणु आदि और द्विपरार्ध अपवर्ग। आदि का अर्थ होता है प्रारंभ और अपवर्ग का अर्थ होता है अंतिम अपवर्ग। तो परम अंग काल का जो सबसे छोटा अंग है उसको परमाणु कहते हैं, जैसे सेकंड से भी कम माप है भारतीय गणना में, वैदिक गणना में। विदेशों में केवल सेकंड तक गिनती है, लेकिन हमारे भारतीय गणना में जो तीन त्रुटि का एक सेकंड होता है, तीन गुना तिगुना फाइन गणना है। काल का यह सबसे छोटा अंग है त्रुटि, एक सुई के छेद से कमल के पत्ते में पंखुड़ी में छेद करने में जितना समय लगेगा हुआ, इसको त्रुटि कहते हैं। तो त्रुटि से लेकर के और द्विपरार्ध तक, द्विपरार्ध है 1,54,40,000,000,000 का होता है द्विपरार्ध। एक काल का एक अंग है। ब्रह्मा जी इतना दिन जीवित रहते हैं, इतने वर्षों तक जीवित रहते हैं। इसीलिए यहां लिखा गया है कि ये जो काल है अपने छोटे अवयव से छोटे छोटे जीवों की आयु को खत्म करता रहता है और अपने बड़े अंग से ब्रह्मा जी की आयु को भी समाप्त करता है। इस प्राकृतिक जगत में जितने भी प्राणी हैं, देवता से लेकर के चींटी पर्यंत, सबकी आयु को काल समाप्त कर रहा है। इसे काल चक्र कहते हैं। यह भगवान विष्णु का चक्र है। काल को कौन घुमा रहा है, कौन वर्ष बदल रहा है? हम लोग तो कभी कभी कैलेंडर बदलते हैं, और आज यह डेट है, परसों भी रहे सूर्योदय होगा तो डेट बदल देंगे, लेकिन वास्तव में दिन को बदल कौन रहा है? कोई सरकार बदल रही है? पता लगाइए कि सूर्य को अस्त करने का काम कौन डिपार्ट कर रहा है, पता लगाना बड़ा कठिन। लेकिन कोई पता न लगा पा रहे कि सूर्य को अस्त कौन कर रहा है या सूर्य को कौन उदित कर रहा है, लेकिन इतना पता होना चाहिए कि कोई न कोई है काम करने वाला। भागवत के 12वें स्कंध में लिखा गया है कि भगवान श्री कृष्ण इसको अस्त करते हैं और इसको उदित करते हैं, यहां तक कि वही सूर्य मंडल के बीच में बैठे हुए हैं जगत को प्रकाश देने के लिए। तो सूर्य के चलते रात दिन होती, रात दिन का विभाजन होता और रात दिन मिलकर के सप्ताह बनते हैं, दिन बनते हैं सप्ताह बनते हैं, जो पक्ष बनता है मास और वर्ष आयन और इस तरह से युग कल्प और दुपरात। तो सबकी आयु को काल भगवान समाप्त कर रहे हैं। तो इस जगत में यह बनियों का समुदाय कभी कभी कदाचित और कम अवसर पर देखता है कि हमारी आयु खत्म होती जा रही है। कदाचित शब्द यह ध्वनित कर रहा है, कभी कभी उसको ऐसा लगता है कि हमारी आयु जा रही है। कब? जब घर में कोई मरता है तब। ऐसे में ऐसे उसको पता नहीं लगता है कि हमारी आयु खत्म हो गई। जब घर में कोई मरता है तब यह बोलना चालू करता है राम नाम सत्य, और बाकी कोई में तो काम धाम सत्य है, राम नाम का तो पता नहीं और समय में कोई ध्यान नहीं रहा। इसलिए कदाचित शब्द का प्रयोग किया है, जबकि मृत्यु को हमेशा सामने देखना चाहिए मनुष्य को, लेकिन यह कभी कभी देखता है। विशेष करके अपने प्रिय की मृत्यु हो जाती है, स्वजन की मृत्यु होती है, तब उस समय ये सोचने लगता है और अपना दिन गिनता है कि मेरा जन्म हुआ इतना वर्ष का हो गया। ये अभी ठीक है, कदाचित विवेक हुआ, अपनी मृत्यु का परिचय हुआ कि मैं मर जाऊंगा या पर जाऊंगा, तो उस समय भी इसे चाहिए कि मृत्यु को रोकने वाला है तो काल चक्र को रोकने वाला है उसकी शरण ले, है ना, उसकी शरण ले। लेकिन काल चक्र जिनका निज आयुध है और जो काल ब्रह्मा से लेकर के तीन स्तंभ आदि तीन और मता गुण तक के आयु को खत्म करता रहता है, उस काल चक्र को चलाने वाले भगवान विष्णु की शरण नहीं लेता है। विवेक होने पर भी विभान हुआ कि वो मर जाना है, दुनिया नश्वर है, ये है वो है, तो भगवान की शरण नहीं लेता है, सारंगी उठा करके जोगी बनकर गोरखपुर चल देता है। हम लोगों की है जोगिया बाबा होते हैं, बस उनका काम है गांव में मांगना और कहते हैं हम गोरखनाथ के फॉलोअर, तो सारंगी लेकर इस गांव से उस गांव से फेरी देना, कुछ मांगना, बस जोग सिद्धि हो गई। अब यही हो, और भी बहुत बहुत जगह पर ऐसे पाखंडी भरे पड़े हैं, खास करके बॉम्बे में तो बहुत, जहां भ्रम होता है ऐसे पाखंडी लोग बहुत जुटते हैं। तो कभी विवेक भी हुआ कि मैं मर जाऊंगा, मेरा जीवन इतना दिन बीत गया है, तो शरण लेता है किसकी? कंक घी भर बटेर की शरण लेता है। सिंह से डरा और शरण लिया की देखने, बताइए सिंह क्या कर्मों से गिद्ध बचा सकता है? मानव एक अपद्यंते माया में तम तरम की, जब विवेक हुआ मृत्यु का पता चला तो मनुष्य को चाहिए कि सीधे भगवान कृष्ण को समर्पण करे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मान के सिंहों का समुदाय आ रहा है उधर से, कोई छोटा सिंह है कोई बड़ा सिंह है, मतलब एक महीना बीत गया, साल बीत गया, ये बीत गया, काल के विभिन्न अंग है, इनको भी हरि कहते हैं, हरि चक्र यहां लिखा गया, चक्र मतलब समूह। तो भी आयु हरता रहता है इसलिए इसको हरि कहते हैं। काल को भी हरि कहते हैं। बानर किसी के सामान को हर लेता है इसलिए उसको भी हरि कहते हैं। चोर को भी हरि कहते हैं। और कृष्ण सबके मन को चुरा लेते हैं, पाप को चुरा लेते हैं, उनको हरि कहते हैं। तो सिंह को भी हरि कहते हैं। तो हरि के समूह से डरता है, डरता सिंहों का झुंड आ रहा है, बीत गया इतना महीना इतना साल हमारे जीवन का, तो डरता है। तो बाघ से सिंह से डर करके बचने के लिए बगुला की शरण लेता है, इसका पांव पूजता है। हे बक महाशय, हमको सिंह से बचाइए। कभी सिंह से बचा पाएगा? सिंह आएगा उस पर वे थप्पड़ मारेगा, वो भी वहीं पर चित्त हो जाएगा। तो सिंह क्या बचाएगा या गिद्ध क्या बचाएगा? बल्कि गिद्ध और बगुला और बटेर ये खुश होंगे कि इस पुष्ट को सिंह मार दे, मार देगा और खा करके कुछ छोड़ेगा तो हम भी खाएंगे, वो ये सोचते है कि नहीं। वो कभी भी बचाना नहीं चाहे, बचा सकते नहीं। इस तरह के बुद्धू लोग इस संसार में जब कुछ विवेक भी होता है तो शरण ले लेते हैं नन वैष्णव ग्रुप में। वैष्णव नहीं, जो विष्णु के भक्त नहीं है उनकी शरण लेते हैं। खास करके जो कहते हैं कि गुरु ही भगवान है, गुरु 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 को पूजो, तो वही गुरु गीत बटेर और कंकर बगुला क्या ऐसे गुरुओं को इस तरह से कहा गया है। इसमें कारण है, गीत है तो बहुत हाई पोजीशन पर रहता है, उसका पद बड़ा हाई है, आकाश में बहुत ऊंचा उड़ता रहता है, है ना। उसका पोस्ट देखिए तो बहुत हाई, बहुत उड़ रहा है। हंस है, मान सरोवर में रहता है, किसी तालाब में रहता है, लेकिन वह खाता क्या है? कमल का पराग खाता है, शुद्ध जल में रहता है, कमल पर बैठता है। और गिद्ध महाशय खूब ऊंचा पद पर है, लेकिन उनकी दृष्टि कहां रहती है? भूमि पर मरे हुए पशु के मांस पर। ऊंचा पद है, ऊंच निवास, नीच करतूती, ऊंचा निवास है और दृष्टि कहां है? ऐसे तो ऐसे ही कुछ आश्रमों में कुछ गुरु और महंत बने हुए है, तो बड़ा हाई पद, महंत जी है, चावल बुलाया जाता है, ये किया जाता है, लेकिन उनकी दृष्टि कहां होती है? किसी स्त्री की ओर, और भी नन संस्कार जो है उधर दृष्टि रहती है। खास करके उनका जो भोजन शुद्ध नहीं होता है तो उसको गिद्ध कहा गया। कोई भी गुरु जिसका भोजन शुद्ध नहीं, जो भगवान विष्णु का प्रसाद नहीं खाता है, वो गिद्ध है। तो ऐसे गिद्ध की शरण कुछ लेते हैं मूर्ख लोग। अगर अपने घर का काम धंधा भी छोड़ते हैं, उस गिद्ध को ले जाकर कुछ पैसा भी अर्पित करते हैं और उसका चेला बन जाते हैं। अगर हाँ हम ठीक हो गए, अब तुमको काल चक्र से बचा लेगा। मानो ये प्रपद देते माया में तम तरंकित है, जो कृष्ण के शरण लेंगे वही बच सकते हैं, तो गिद्ध बकुला बटेर क्या बचाएंगे? तो जिनका भोजन बिल्कुल दूषित है, जो कभी भी कृष्ण प्रसाद नहीं खाते हैं, वे सभी गिद्ध हैं।
खास करके गिद्ध राज हैं गुरु लोग। बहुत बहुत जगह ये गिद्ध लोग आश्रम खोल करके बैठे हैं, और मंदिर तो नहीं लेकिन हाँ आश्रम बना बना कर बैठे। मंदिर तो बनाएंगे तब तो भगवान को रखना ही पड़ेगा, है ना। तो ऐसे बहुत से गिद्धों के आश्रम जहां था, और जाकर उनकी शरण लेता है, समर्पण करता है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मय श्री गुरुवे नमः, इस तरह से ये कहता रहता। गुरु कहीं ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा जी पूरे विश्व की सृष्टि करते हैं, गुरु क्या करता है, क्या सृष्टि किया है, किस माने में ब्रह्मा जी है बताइए। मैं चैलेंज करता हूं वास्तव में आप सभी से, किस विषय में ब्रह्मा जी है? ब्रह्मा जी पूरे विश्व की सृष्टि किए हैं, हम सबका शरीर बनाए हैं, गुरु क्या बना सकता है, क्या बनाया है? और शिव जी पूरे विश्व का संहार करते हैं, महादेव है, और किसका संहार कर सकता है? और एक आदमी की हत्या भी कर देगा तो जेल में चला जाएगा, वो क्या प्रलय करेगा, है कि नहीं? और विष्णु वो सबके हृदय में है, सब जगह प्रविष्ट है, सबका पालन करते हैं, गुरु किसके किसके हृदय में है? उसके टेंशन उसे कोई रुपया कार्य कर ले जाए तो नहीं जानेगा, और हो गया विष्णु सर्वव्यापक, और गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरु, गुरु साक्षात पर ब्रह्म हो गया, ऐसे गुरु को प्रणाम है, और साक्षात पर ब्रह्म जो वास्तव में है उनको धिक्कार है उनसे कोई मतलब नहीं, इसीलिए हम लिखा गया अनादृत्य काल चक्र जिनका अपना आयुध है, काल चक्र जिनके हाथ में है, ऐसे प्रभु का साक्षात भगवंतम यज्ञ पुरुषम अनादृत्य उनका अनादर करता है, जो यज्ञों के भोक्ता है भगवान विष्णु साक्षात भगवान है, साक्षात भगवान का अर्थ है समस्त ऐश्वर्यों से ऐश्वर्य वीर्य बल आदि से परिपूर्ण है, समस्त जीवों का पालन कर सकते हैं, सबको सरल लक्ष्य रख सकते हैं, लेकिन ऐसे यज्ञ पुरुष भगवान को छोड़कर पाखंड देवता कंक गृद बटक प्राय आर्थ समय पर एकता संकेत को न अभिभक्त है, पाखंड देवता को कोई अर्थ है, कुछ ऐसे लोग अपने देवता मान लेते हैं जो वेद शास्त्र में वर्णित नहीं है, वेद में जिनका उल्लेख नहीं, बहुत से ऐसे ग्रुप हैं सर, क्या नाम रखा गया इस मंच से, जैसे बाबा धादे, ये इनके ये भी मान लेते हैं कि हमारा कोई देवता है, लेकिन वो पाखंड देवता उन्हें कहते हैं, नग्न रहना, मंदिर में नग्न मूर्ति रख दिए और कहते हमारा देवता है, उनका देवता है। इस तरह से सारी दुनिया में सब जगह है पाखंड देवता है, और उनको पूजने वाले, उस पंथ का प्रचार करने वाले गुरु लोग भी इसी तरह के हैं, तो वैसे पाखंड देवताओं को और गुरुओं को कंक गृद और पट कहा गया, कपि लौल्य, कपि शब्द का अर्थ होता है लोल्य, लोभी, जो पैसे के लोभी होते हैं उनको कंक कहा गया, और गिद्ध कहा गया है जो खान पान शुद्ध नहीं रखे, कभी भगवान को भोग नहीं लगाते, कभी कहीं तो हम देखते हैं गुरुओं के आश्रम में जहां केवल गुरु ही उपास्य है, मैं एक आश्रम में चला गया था श्री पंचमी को, बसंत पंचमी को, तो मैं देखा गुरु जी झूला पर बैठे हुए थे और भोजपुरी में गीत चल रहा था, हमारा सब गुरुदेव के झूलेला पालना, और वो झूला रहे थे बारी बारी से, पैसा अर्पण कर रहे थे, और वो बच्चा जैसा बैठा था, तो हमको भी कहा गया कि आप भी जरा झूलाई ना का बस 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 करो, हम कृष्ण को झूलाने के अलावा और जाने ही नहीं है किसी, जन्माष्टमी के दिन हम लाला को झूला झूला, इसको क्यों झूला झूला, अश्वत बोलिए सर्वनाश हो जाएगा, मैं कहा होने तो सर्वनाश सर्वनाश हो जाएगा, इस पाखंडी को झूला न झूलाए तो सर्वनाश हो जाएगा, खूब गा रहे थे बजा रहे थे और उसका जूठा प्याज लहसुन आदि सब खा रहे, ये चल रहा है पाखंडी, इसको पाखंडी कर, खंड मतलब चिन्ह, पाप का चिन्ह जो पाखंड कहते हैं, संस्कृत में खंड का अर्थ होता है चिन्ह, सिम्टम, पाखंड, तो और बक बक या बट का अर्थ होता है बक जो है वो श्वेतांबर ब्रह्मचारी होता है, बकुला, बड़ा उजला कपड़ा पहनता है और लगभग 24 घंटा में बहुत घंटा उसका ध्यान में जाता है, लेकिन किस वस्तु का ध्यान करता है, मछली का या पेड़ का, मेढक का, है ना, एक पैर पर खड़ा रहता है, खड़े शरीर, मौन रहता है बबूला, है कि नहीं, मौन रहता है और एक पैर पर खड़ा रहता है और आंख को आधा बंद करके और ध्यान करता है। बकुल ध्यान, बकुला का ध्यान बड़े प्रसिद्ध। लेकिन कहां पर ध्यान लगा हुआ है महाराज जी का, कि कोई भी मछली असावधान होकर के हमारे रेंज में आ जाए और बस गप से अपना पा करके फिर ध्यान, फिर ध्यान करते रहे। इस तरह के गुंडे गुरु लोग भरे पड़े इस दुनिया में, बस ऊपर से दिखाते हैं बहुत अच्छा ध्यान कर रहे हैं और दूसरे लोग देखते हाँ डिस्टर्ब मत कर ध्यान कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई मन का एक्सरे करने वाली मशीन होती तब तो पता चल जाता कि इसके मन में क्या दशा हुआ, किसका ध्यान कर रहा है। केवल ऊपर से बस ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, लोग पहुंच जाते हैं। कभी काल चक्र से भयभीत होकर ऐसे बकुला के शरण लेते हैं, वो क्या बचाएगा। जो स्वयं ही मछली का ध्यान कर रहा है वो क्या आपको भक्ति देगा, क्या ज्ञान देगा, ये सोचने की बात है वास्तव में।